तुम अभी भी नहीं बता रहे ना, तुम्हें पता है मुझे कितनी मेहनत लगी थी रेडी होने में, कितनी मुश्किल से मैंने खुद से साड़ी पहनी थी क्योंकि मैं तुम्हें और आई को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरी तारीफ नहीं की, मुझे बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। नित्या की नाराजगी भरी आवाज कानों में पड़ी। तब कहीं जाकर मानव उसकी मोहिनी जाल से बाहर आया और नजर नित्या की नाराजगी भरे चेहरे पर ठहर गई। होठों पर अनायास ही हल्की मुस्कान उभर आई। वो बच्चों जैसे शिकायत कर रही थी और मानव को वो हर रूप में प्यारी लगती थी, वो उसकी हर अदा का कायल था। बात तो सही कही तुमने, मेहनत तो तुम्हें लगी होगी और हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो बुरा लगना भी स्वाभाविक है। मानव ने तुरंत ही अपनी मुस्कुराहट छुपा ली, चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन ले आया। नित्या मुंह बनाए उसे घूरने में लगी थी। लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने हमें तारीफ करने का मौका ही कब दिया? मानव ने भौं उछाली और इंटेंस निगाहों से उसे देखा। नित्या थोड़ी कन्फ्यूज हो गई। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें तारीफ करने से रोका था? बिल्कुल नहीं, मानव ने तुरंत ही गर्दन हिलाई और गंभीरता से बोला। ऐसा नहीं कहा मैंने कि तुमने मुझे तारीफ करने से रोका है। मेरी बात का मतलब बस इतना था कि तुमने हमें तुम्हारी तारीफ में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। याद करो हमारा वेलकम तुमने कैसे किया था, जब हम आए तो कैसे तुम रोने लगी थी। किसी तरह मैंने तुम्हें समझा बुझा कर चुप करवाया, उसके बाद तुम्हारे डैड और दादू से देर से आने के लिए माफ़ी मांगी, उसके बाद तुम अपने डैड के साथ थी और बड़ों के बीच मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, फिर तारीफ कैसे करता। उसके बाद तुमने चेंज ही कर लिया और तब से तो तुम बेवजह मुझसे मुंह फुलाकर घूम रही हो। अब बताओ कब और कैसे तारीफ करता मैं तुम्हारी? मानव ने आईब्रो उचकाई। नित्या को सब वापस याद आ गया और इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। अंत में उसने मुंह बिसोड़ते हुए मानव को घूरा और चेहरा फेर लिया। अब तुम बेवजह मुझसे नाराज हो रही हो, सच में मुझे मौका नहीं मिला। अभी भी नहीं मिला होगा ना तुम्हें मौका? नित्या तुनकते हुए बोली और तिरछी निगाहों से उसे घूरते हुए मुंह बना लिया। नहीं, अभी तो मौका है। मानव ने तुरंत गर्दन हिलाई और उसकी कलाई पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। नित्या चौंक गई, खींचने की वजह से एकदम से मानव के करीब आ गई। उसकी हथेली मानव के सीने पर ठहर गई और वो अपना छोटा सा सर उठाए हैरानगी से उसे देखने लगी। मानव की उंगलियां उसके चेहरे पर फिसलने लगी। नित्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मानव की छुअन से वो मचल उठी, अपनी तितली के पंख जैसी घनी पलकों को फड़फड़ाने लगी। मानव ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को अपनी उंगलियों में फंसाकर कान के पीछे किया। इस दौरान उसकी सर्द उंगलियां नित्या के गाल और कान को छू गईं। नित्या सहर उठी, उसकी धड़कनें तेज चलने लगीं। नित्या हड़बड़ाते हुए मानव से दूर होने लगी, लेकिन मानव ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने नित्या की कमर को पकड़ लिया, उसे अपने और करीब कर लिया। नित्या आंखों की पुतलियां फैलाए हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। मानव की नज़दीकियों और उसकी छुअन का असर था कि उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। दिल जोरे से धड़क रहा था, मन में हलचल सी मच गई थी। मानव उसके गुलाबी होते चेहरे को देखकर मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। नित्या की घनी पलकें झुकती चली गईं। मानव की शर्ट को उसने अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। सीने पर होती हलचल, कानों में गूंजती धड़कनों का शोर, मचलता बदन और कांपते होंठ उसके दिल के हाल को बयां कर रहे थे। मानव के होठों ने उसके कान को छुआ। नित्या के थरथराते होठों से गहरी आह निकली और मानव की शर्ट पर उसकी पकड़ कस गई। यू वर लुकिंग मेस्मराइजिंग, मैंने जब तुम्हें साड़ी में देखा तो बस देखता ही रह गया था। इतनी प्यारी लग रही थी तुम कि मेरी निगाहों ने तुम पर से हटने से इनकार कर दिया था। मानव की ठहरी हुई अट्रैक्टिव वॉइस नित्या के कानों में शहद सी घुलने लगी। धड़कते दिल और थमती सांसों के दरमियान उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी पलकों को उठाया, तिरछी निगाहों से उसे देखा। दोनों की निगाहें टकराईं और मुस्कुराहट गहरा गई। नित्या ने मानव के पैर पर अपने पैर रख दिए, एड़ी उचकाई और उसके गर्दन में अपनी बाहों को लपेटकर एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मानव आंखों की पुतलियां फैलाए आश्चर्य से उसे देखता ही रह गया। नित्या ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहों के घेरे को कसा और धीरे धीरे अपने सॉफ्ट गुलाबी होठों से उसके होठों को सहलाने लगी। मानव जैसे गहरी नींद से जागा, एक हाथ से उसकी कमर को थामकर उसे सपोर्ट दिया और दूसरे हाथ की उंगलियों को उसके बालों में उलझाकर शिद्दत से उसके होठों को चूमने लगा। लम्हे गुजरते रहे थे, वो कमरा उनके प्यार की खुशबू से महकने लगा। बेचैन धड़कनों का शोर हवाओं में घुलने लगा। नित्या के हाथ मानव के बालों और पीठ पर घूमने लगे। मानव की उंगलियां उसकी कमर व पेट में धंसने लगी थीं। पल पल उनके बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। ये बेकरारी थी कि हर बीतते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच हवा के गुजरने की भी जगह नहीं थी। मानव पूरी शिद्दत से उसे अपनी मोहब्बत का एहसास करवा रहा था और नित्या भी उसकी मोहब्बत को पाकर उसकी बाहों में पिघलने लगी थी, उस पर अपना प्यार खुलकर जाहिर कर रही थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के होंठों को चूमते रहे।
एक लंबी डीप पैशनेट किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लम्हे भर को उनकी निगाहें एक दूसरे की निगाहों से टकराई। फिर नित्या उसके सीने से लग गई और अपनी बाहों में उसकी पीठ को जकड़ लिया। मानव मुस्कुराया, बड़े ही प्यार से उसके सर को चूमते हुए नित्या को अपनी बाहों में भर लिया। तीनों बड़े अभी भी बाहरी बैठे थे, शादी की तैयारियों को लेकर उनके बीच डिस्कशन हो रही थी। तभी मानव और नित्या ने वहां कदम रखा। तीनों का ध्यान उनकी तरफ गया। नित्या ने खूबसूरत सी लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। मानव की हथेली थामे वो मुस्कुराती हुई उनके तरफ बढ़ रही थी। चेहरे पर कशिश, जुगनुओं से चमकती आंखें, होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट। नित्या ताजे गुलाब सी खिली खिली और बेहद खुश नजर आ रही थी। चहकते हुए मानव से बात कर रही थी, जो हल्की मुस्कान होंठों पर सजाए, आंखों में मोहब्बत का समुद्र कैद किए उसे प्यार से निहारते हुए उसकी बात सुन रहा था। डैड, दादू आए, आप इतनी देर से बातें ही कर रहे हैं, चलिए ना अंदर, डिनर रेडी हो गया और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। नित्या ने निचले होंठ को बाहर निकालकर क्यूट सी शक्ल बनाई और उसकी मासूमियत मानव के साथ साथ यहाँ मौजूद बाकी तीनों लोगों के होंठों पर भी मुस्कुराहट ले आई। हमेशा ऐसे ही खुश रहो, अनीता जी ने उसकी बलाइयाँ ले ली। नित्या सौम्यता से मुस्कुराई। मिस्टर शेरगिल और दादाजी के चेहरे पर सुकून उतर आया। मिस्टर शेरगिल ने मानव को एक टास्क दिया था, उसका टेस्ट लिया था, धमकी दी थी और मानव बहुत ही आसानी से उनका टेस्ट क्लियर कर गया था। नित्या मुस्कुरा रही थी, वो खुश थी। मिस्टर शेरगिल ने नजरें मानव की तरफ घुमाई, जो नित्या को देख रहा था। चलो बेटा, आपको भूख लगी है तो बाकी बातें कभी और करेंगे, अभी डिनर के लिए चलते हैं, फिर मानव को घर भी जाना है। दादाजी ने अपना स्नेही भरा हाथ नित्या के सर पर रख दिया। उसके बाद मानव अनीता जी को अंदर चलने को कहा। कुछ ही मिनट बाद वो सभी डाइनिंग एरिया में मौजूद थे, जहाँ पूरा टेबल अलग अलग डिशेज से भरा हुआ था। अनीता जी और मानव दोनों को वो वक्त याद आ गया जब नित्या उनके घर में उनके साथ रह रही थी। यहाँ पूरा टेबल अलग अलग डिशेज से भरा था और उनके वहाँ तो गिनती की चीजें बना करती थी, ज्यादा ऑप्शन होते ही नहीं थे। खाना देखकर उसने एक बार कहा भी था कि बस इतनी ही चीजें हैं। उसने तब जो कहा था उसकी वजह उन्हें अब समझ आ रही थी। दोनों की नजरें एक साथ नित्या की तरफ घूम गई। वो आश्चर्यचकित थे कि महलों में रहने वाली ये लड़की उनके छोटे से घर में किस तरह रह गई।
नित्या की नजर उनकी तरफ उठी और वो मुस्कुरा दी। मेड ने आकर सबको खाना सर्व किया। डिनर के बीच दादाजी और अनीता जी के बीच कुछ बातें भी हुईं। उसके बाद जब मानव के जाने का वक्त आया तो नित्या फिर से उदास हो गई। मानव चला गया। बाहर खड़ी नित्या तब तक हाथ हिलाकर उसे बाई करती रही जब तक वो उसे दिखता रहा। कार मेन गेट से बाहर निकली और नित्या मायूसी से अंदर जाने के लिए पलट गई, लेकिन जैसे ही नज़र सामने पड़ी उसके कदम ठिठक कर रुक गए और चेहरे पर घबराहट झलकने लगी।